नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। और हम भारत सेशेल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है।
दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।